आर्यांश ने आज शाम दीवा को जल्दी घर आने को कहा था। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। दीवा ने भी आज अपना काम टाइम से खत्म कर लिया था। जैसे ही दीवा हॉस्पिटल से निकलने को हुई, उसे समय का कॉल आया और उसे पता चला कि इनाया स्कूल में बेहोश हो गई थी। उसे हॉस्पिटल लाया गया है। दीवा इनाया से मिलने गई तो नर्स लीजा ने बताया कि इनाया स्ट्रेस के चलते बेहोश हुई थी और उसे इस वक्त किसी के इमोशनल सपोर्ट की सख्त ज़रूरत थी। ऐसे में दीवा को उसके पास रुकना ही था। दीवा इनाया के पास जनरल वार्ड में उसके बेड के पास बैठी हुई थी। वो उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। इनाया का चेहरा मुरझाकर पीला पड़ गया था। उसे देखकर दीवा को दया आ रही थी। दीवा ने उसके बालों को सहलाते हुए मन ही मन कहा, माँ बाप जो भी करते हैं उसमें बच्चों की क्या गलती है जो तुम्हें इतना सहना पड़ रहा है। इनाया, आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मॉम डैड को पता चला तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। दीवा के पास में ही समय खड़ा हुआ था। दीवा को परेशान देखकर उसने धीमी आवाज में कहा, दीवा बाहर चलकर बात करते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। इतनी भागदौड़ में समय को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला कि आखिर इनाया बेहोश क्यों हो गई थी। दीवा को उसके बारे में सब जानने की जरूरत थी। दीवा ने उसे देखकर सिर हिलाया और फिर समय के साथ रूम से बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था, आर्यांश का गुस्सा भी बढ़ते जा रहा था। हॉस्पिटल उसके घर से बहुत ज्यादा दूर था। अगर दीवा ट्रैफिक जाम में भी फंसी होती तो उसे अब तक घर आ जाना चाहिए था। सुमन उसके पास खड़ी उसके हालात देख रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि आर्यांश गुस्से में है। ऐसे में उसका गुस्सा दीवा पर ही उतरना है। सुमन धीमे कदमों से चलकर उसके पास आई और शांत लहजे में पूछा, क्या मैं आपके लिए खाना बना दूं मिस्टर कपूर? कोई जरूरत नहीं है, आर्यांश ठंडे लहजे में बोला। उसने भी जिद ठान ली थी कि आज रात का खाना वो दीवा के हाथ का ही खाएगा। सुमन बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके मन में इस वक्त एक ख्याल चल रहा था कि आज रात दीवा घर आएगी तब न जाने आर्यांश उसके साथ गुस्से में कैसा बर्ताव करेगा। आर्यांश की नजरें घड़ी पर टिकी हुई थी और इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। दीवा ने उसे एक कॉल तक नहीं किया था, जैसे वो कहीं गायब हो गई हो। अब आर्यांश के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। आर्यांश ने अपना फोन निकालकर दीवा की लोकेशन चेक की तो वो अभी भी हॉस्पिटल की लोकेशन बता रहा था। तो क्या तुम किसी इमरजेंसी में फंस गई हो मिस कोयंका? उम्मीद है कि तुम्हारे पास घर न आने का एक वैलिड रीजन हो, वरना फिर से तुम मुझे नशे में मिली तो आई स्वेयर इस बार मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाला, आर्यांश ने गुस्से में मन ही मन कहा। अभी भी वो दीवा के आने का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ समय ने दीवा को पूरी बात के बारे में बता दिया था कि कैसे कल किसी ने इनाया के पेरेंट्स की फोटो और कुछ आर्टिकल्स वायरल कर दिए थे। पूरी बात जानने के बाद दीवा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, कोई इतनी घटिया हरकत कर भी कैसे सकता है? बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए? मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ। मैंने स्कूल स्टाफ के साथ मिलकर सारी फोटोज को हटवा दिया है और आर्टिकल्स को भी। बस अब हम असली गुनहगार के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेशन तो हमें पता चल गई थी, लेकिन किसी ने सोच समझकर सब कुछ किया था। कैफे के अंदर का कैमरा कुछ देर के लिए बंद था, समय ने उसके कंधे को सहलाते हुए कहा। दीवा ने गहरी सांस ली और कहा, बेचारी इनाया को कितना सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। पहले उस लड़की ने स्कूल में उसकी बदनामी करने की कोशिश की, तो अब, बोलते हुए दीवा रुक गई। उसे कुछ स्ट्राइक हुआ तो वो बोली, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसने पहले इनाया के साथ झगड़ा किया था और उसे एक्सपेल करवाने की कोशिश की थी? हमें भी यही लगता है कि ये अमायरा का किया हुआ है। उसके पेरेंट्स काफी अच्छी पोजीशन पर हैं। अगर मामला बाहर भी आया तो वे उसे दबाने की कोशिश करेंगे, समय ने बुझी हुई आवाज में कहा। दीवा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। अगर अमायरा के पेरेंट्स अच्छी पोजीशन पर हैं तो उनसे भी अच्छी पोजीशन का इंसान उसके पेरेंट्स और अमायरा दोनों को हैंडल कर सकता है। इस वक्त दीवा के दिमाग में एक ही नाम आ रहा था और वो था आर्यांश कपूर। आर्यांश का ख्याल आते ही दीवा को तुरंत याद आया कि उसे घर जल्दी पहुंचना था। आज आर्यांश ने उसके हाथ का खाना खाने की फरमाइश की थी। अचानक ही दीवा के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए थे। उसने जल्दी से पूछा, समय टाइम क्या हुआ है? 8:30 बज रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? समय ने उसे परेशान देखकर पूछा। ओ नहीं, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं इनाया को भी अकेले नहीं छोड़ सकती, मुझे उसे कॉल बता देना चाहिए, दीवा ने मन ही मन कहा और अपना मोबाइल निकालकर कॉल करने को हुई। तभी उसे अंदर से इनाया के चीखने की आवाज सुनाई दी। दीवा सब कुछ भूलकर दौड़कर अंदर गई। उसने देखा इनाया का आईवी हिल गया था, जिस वजह से वो दर्द से चिल्लाई। दीवा को इस चक्कर में होश भी आ गया था। जल्दी से उसने उसकी ड्रिप की नीडल को सही किया। इनाया ने बिल्कुल धीमी आवाज में दीवा की तरफ देखकर कहा, दीदी मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हुआ है? तुम बेहोश हो गई थी तो समय तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया था, दीवा ने जवाब दिया। इनाया ने समय की तरफ देखकर उसे धीरे से थैंक्स कहा। इनाया को होश आ गया था और उसकी ड्रिप भी लगभग खत्म हो गए थे। दीवा नहीं चाहती थी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलते ही इनाया वापस स्कूल जाए। उसने इनाया से कहा, हम अपने घर चलते हैं। इनाया, नहीं दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस खाना नहीं खाया था इस वजह से चक्कर आ गया था,
घर पर गई तो बड़े पापा और बड़ी मॉम परेशान होंगे। मैं कमजोर नहीं हूँ, खुद को संभाल सकती हूँ, इनाया ने पूरी बहादुरी से कहा। इतनी कम उम्र में भी वो काफी समझदार हो गई थी। दीवा ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, मॉम डैड तुम्हारे आने से भला क्यों परेशान होंगे, वो तुम्हारा ही घर है। मेरे आने से तो परेशान नहीं होंगे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी तबीयत खराब है और क्यों हुई थी उसका कारण जानकर वे दुखी हो जाएंगे। डोंट वरी दूदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इनाया ने जवाब दिया। इनाया घर नहीं जाना चाहती थी और दीवा उसे बेवजह हॉस्पिटल में भी रोककर नहीं रख सकती थी। समय ने दीवा को समझाते हुए कहा, तुम पैनिक मत करो, स्कूल में मैं इसका ख्याल रखूंगा। थैंक यू सो मच समय, दीवा ने मुस्कुराकर कहा। फिर दीवा इनाया की तरफ पलटी और बोली, और तुमने खाना क्यों नहीं खाया था? सबसे पहले हम चलकर खाना ही खाने वाले हैं और मैं तुम्हारा एक बहाना नहीं सुनने वाली हूँ। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, इनाया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। दीवा ने ड्रिप को हटाया और फिर समय और इनाया के साथ हॉस्पिटल के कैंटीन एरिया में खाना खाने के लिए चली गई। उसने इनाया को अपने हाथों से खाना खिलाया और दीवा के जाने के बाद समय इनाया को अपने साथ वापस स्कूल ले गया। उसने वादा किया था कि वो इनाया का पूरा ख्याल रखेगा। उन दोनों को भेजने के बाद दीवा अपने ऑफिस में आई। आज वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। फाइल समेटने के बाद दीवा ने घर जाने का सोचा। उसने फाइल्स उठाई थी कि तभी उसके हाथ से फाइलों का ढेर वापस टेबल पर गिर गया था। दीवा की आंखें डर से फैल गई थी क्योंकि सामने आर्यांश खड़ा था और इस वक्त उसके चेहरे के भाव बेहद सर्द थे, मानो वो उसे अभी खा जाएगा। डर के मारे दीवा ने अपने कोट को कसकर पकड़ लिया था। जब भी दीवा आर्यांश को इतना गुस्से में देखती तो उसे डर लगने लगता। वो कुछ कह पाती उससे पहले आर्यांश बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगा। उसकी ये खामोशी दीवा के दिल में और ज्यादा घबराहट पैदा कर रही थी।
अरे नहीं, उसने मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं किया? क्या वो इतना ज्यादा गुस्से में है कि अब बात भी नहीं कर रहा? दीवा ने हड़बड़ाकर कहा और आर्यांश के पीछे जाने लगी। उसने हाई हील्स पहनी हुई थी और लिफ्ट बिजी होने की वजह से उसे सीढ़ियों से जाना पड़ा। दीवा जल्दी से पार्किंग के अंदर गई, लेकिन पार्किंग एरिया में भी उसे आर्यांश नजर नहीं आया। उसने उसे खो दिया था। दीवा को इस वक्त ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो आर्यांश को फिर नहीं देख पाएगी, कि तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से पकड़ा और आर्यांश की गाड़ी से लगा दिया था। वो आर्यांश था। अगले ही पल उसने दीवा के होठों को कैप्चर कर लिया था और उसे काफी वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे आर्यांश उस किस के जरिए अपना गुस्सा दीवा पर उतार रहा था। दीवा की सांसें अटकने लगी थीं, फिर भी आर्यांश ने उसे नहीं छोड़ा। जब आर्यांश का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा तो उसने दीवा को छोड़ दिया था। दीवा ने गहरी सांस लेकर खुद की ब्रीदिंग नॉर्मल करने लगी। आर्यांश ने एक नज़र उसे देखा और वहां से दूसरी तरफ पलटा। तभी दीवा ने पीछे से कहा, आर्यांश? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर आर्यांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ पलटा उसके चेहरे के भाव सर्द थे। उसने काफी बेरुखी से पूछा, क्या है? आई एम रियली सॉरी, मैं सच में अपना काम जल्दी कर चुकी थी, लेकिन मेरी कज़िन की तबीयत खराब हो गई थी और उसे हॉस्पिटल लाया गया। मैं तुम्हें इन्फॉर्म भी करने वाली थी, पर इस बीच उसे होश आ गया और मुझे बात करने का मौका नहीं मिला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कल टाइम से आऊँगी और तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊँगी। दीवा जल्दी जल्दी बोलते हुए अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। ऐसा करते हुए वो काफ़ी मासूम और क्यूट लग रही थी। उसका चेहरा देखकर आर्यांश उसे ठीक से डांट भी नहीं पाया। आर्यांश ने गहरी सांस ली और बिना किसी भाव के कहा, अब तुम्हारी कज़िन कैसी है? वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जिद करके स्कूल चली गई। वो वही स्कूल के हॉस्टल में रहती है, दीवा ने उदास चेहरे के साथ कहा। आर्यांश को उसके इस उतरे हुए चेहरे से सख्त चिढ़ थी। क्या हुआ था उसके साथ? आर्यांश ने आगे पूछा। कार में चलो, फिर बताऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ, दीवा ने जवाब दिया। आर्यांश ने उसके लिए गाड़ी अनलॉक की तो दीवा जल्दी से जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई थी। आर्यांश गाड़ी ड्राइव कर रहा था और रास्ते में दीवा उसे इनाया के बारे में बता रही थी। जैसे जैसे वो उसे इनाया के बारे में बता रही थी, गुस्से में दीवा की सांसें अटक रही थीं। दीवा की हर हरकत आर्यांश के दिल में हलचल पैदा कर रही थी। वो परेशान थी, वो भी किसी और की वजह से। आर्यांश ऐसा कभी नहीं देख सकता था, लेकिन वो चाहकर भी दीवा को कुछ जाहिर नहीं कर सकता था। जैसे ही आर्यांश का विला आया, वो बिना कुछ बोले गाड़ी से बाहर निकला और तेज कदम बढ़ाते हुए अंदर चला गया। उसके हाव भाव से साफ जाहिर था कि उसने अभी तक दीवा को माफ नहीं किया है। इन सब से दीवा की घबराहट और बढ़ गई थी, लेकिन वो खुद को बचा नहीं सकती थी। उसे आर्यांश का सामना करना ही था। दीवा ने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करके अपने कदम आर्यांश के पीछे बढ़ा दिए थे। न जाने आज रात उसे आर्यांश के गुस्से का सामना किस तरह से करना था।